संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। 149वीं गाथा चलनी है, प्रकरण है द्रव्य विशेषाधिकार। गे तब तो प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है, उसमें सबसे पहले सामान्य द्रव्य अधिकार और दूसरे में विशेष द्रव्य अधिकार, इसकी चर्चा हो रही है। और इसके बाद में ज्ञान गे विभागाधिकार आएगा। अपन जब इसकी चर्चा कर रहे थे तो ये आगे का विषय भी मुझे काफी परिचित लग रहा है, ऐसा लगता है हो गया था, लेकिन वो बता रहे हैं कि बस 138 गाथा तक हुआ था और 139वीं गाथा से चलना है। ऐसा हो सकता है कि मैं तो रोजी ना पढ़ता हूं ना, तो आगे पीछे की भी 10-5 गाथाएं पढ़ता रहता हूं, इसलिए मेरे दिमाग में वो विषय परिचित सा हो गया हो और ऐसा लगता है कि वो हो गया है। बहुत साधारण बातें हैं जो हम द्रव्य संग्रह आदि अनेक ग्रंथों में पहले पढ़ चुके हैं। द्रव्य विशेष अधिकार में बेई बातें ज्यादा हैं। अब जो आज गाथा चलनी है 139, तो वो सीधी सी बात है, परमाणु गगन प्रदेश लंघन करे जितने काल में, उत्पंस ध्वंसी समय परापर रहे वह ही काल है। काल की परिभाषा बता रहे हैं कि एक पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश से अत्यंत मंद गति से दूसरे प्रदेश पर जब गमन करता है तो उसमें जितना काल लगता है वह काल का सबसे छोटा अंश है और उसे कालद्रव्य की पर्याय कहते हैं। ये बात इस गाथा में बताई गई है। अपन सब लोग जानते हैं 2-3-4 बातें कि परमाणु के नाप से हम प्रदेश को नापते हैं, कि पुद्गल का परमाणु आकाश के जितने हिस्से को घेरे वो आकाश का उतना हिस्सा एक प्रदेश कहलाता है। और फिर ऐसे एक एक प्रदेश के हिसाब से आकाश में अनंत प्रदेश हैं, माने आकाश का जो बड़ापन हमने नापा तो पुद्गल के परमाणु से नापा, कि परमाणु का एक परमाणु जितनी जगह घेरे उसको एक प्रदेश कहते हैं, ऐसे अनंत प्रदेश आकाश में हैं। वो कहते हैं प्रदेश आकाश में अनंत हैं, जैसे हमने नापा ना पुद्गल के परमाणु के गज से, ऐसे ही हम धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और इनको भी नापें और एक जीव द्रव्य, वे भी इसी प्रकार वे अनंत हैं और आकाश में प्रदेश और इनमें असंख्यात प्रदेश हैं। फिर ये तो हमने प्रदेशों की दृष्टि से नाप लिया उसकी, जिसे अपने कहते हैं लंबाई चौड़ाई और मोटाई। फिर लंबाई, अब दूसरी लंबाई माने पर्यायों की दृष्टि से, तो काल जो है उसका समय है वो पर्याय की दृष्टि से नापा जाता है। अब वो कहते हैं कि एक पुद्गल का परमाणु अपनी तीव्र चाल से चले तो 14 राज्य तक जाता है, सबसे नीचे लोक के हो गए और दूसरे समय में वो लोक के अग्रभाग में पहुंच जाता है। जीव का उदाहरण तो 7 राजू का ही है, क्योंकि मध्य लोक से सिद्ध शिला में जाता है, ऐसा होता नहीं कि निगुद के अंत में नीचे हिस्से से जीव निकल के वो सीधा सिद्ध शिला में पहुंच जाए। लेकिन पुद्गल का तो 14 राजू का है। अब 14 राजू में कितने प्रदेश है, 14 राजू के प्रदेश, एक राजू में कितने प्रदेश होते हैं, भले ही इसकी संख्या कहीं शास्त्र में नहीं लिखी है इसलिए हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो लिखा है कि लोकाकाश के असंख्य प्रदेश होते हैं। तो लोकाकाश के इस प्रदेश से उस प्रदेश तक चला गया तो वे असंख्य प्रदेश चला जाता है। एक समय में असंख्य प्रदेश चला गया और एक समय में एक प्रदेश गया। ये सबसे छोटा सबसे मंद गति हो गई ना। भले ही मंद लिखा हो लेकिन ये मंद से मंद गति, मंद से मंद मतलब अब इससे इसके दूसरे और टुकड़े नहीं हो सकते और मंद नहीं हो सकती है ना, इससे और धीरे नहीं चल सकता वो और उससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके को समझने के लिए आगम के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आचार्यों ने युक्तियों से हमको ये बात बहुत स्पष्ट समझाने की कोशिश की है पर हम समझते भी हैं, उन युक्तियों को हम याद कर लेते हैं फिर हम तुमको बता देते हैं, तुम आगे के बच्चों को बता दोगे, लेकिन वो गले उतरना और उतारना बहुत कठिन काम है कि भाई एक उद्गल का परमाणु लोक के नीचे से वहां तक गया तो वो समझ लो कि उसी समय तो वो नरक में है, उसी समय मध्य लोक में है और उसी समय ऊर्ध्व लोक में है। अब एक जीव गया सात राज्य 14 और 7 बनो क्या फर्क पड़ता है, है? तो यहां से सिद्ध सला में गया तो ऊर्ध्व लोक को पार करता हुआ गया ना, तो उसी समय वो यहां मध्य लोक में है, फिर वो पहले स्वर्ग में है, दूसरे में है, तीसरे में है, उन सबको पार करता गया ना उसी समय। तो ये गले उतरना कितना कठिन काम है, है? कि भाई एक ही वो परमाणु और दोनों जगह उसी समय है। तर्क युक्तियां बहुत, ये 40वीं गाथा की टीका में आचार्य देव ने बताई हैं तो अभी अपन उन्हें पढ़ेंगे। अभी अपन 39वीं गाथा की टीका पढ़ते हैं। प्रदेश मात्र काल द्रव्य के द्वारा आकाश का जो प्रदेश व्याप्त हो उस प्रदेश को जब पुद्गल परमाणु मंद से मंद गति से उल्लंघन करता है तब उस प्रदेश मात्र उल्लंघन के माप के बराबर जो काल पदार्थ की सूक्ष्म वृत्ति रूप समय है वह उस काल द्रव्य की पर्याय है। उस पर्याय के पहले और बाद की वृत्ति रूप से प्रवर्तमान होने से जिसका नित्यत्व प्रगत है ऐसा पदार्थ द्रव्य है। इस प्रकार काल द्रव्य अनुत्पन्न अभिनष्ट है और पर्याय रूप समय उत्पन्न ध्वंसी है। बात तो हर साधारण है, सीधी सी है और भाषा हिंदी में ही है तो भी काफी एड़ी टेढ़ी हो जाती है, कोई उपाय नहीं है कोई दूसरा अपने पास में। जब अपन एक एक पर भाषा पर ही विचार करते हैं, प्रदेश मात्र काल द्रव्य के द्वारा, काल द्रव्य का नाप क्या है कि आकाश का एक प्रदेश, जो आकाश के प्रदेश को नापा था अपन ने पुद्गल के परमाणु से और अब ये कह रहे हैं कि उस आकाश के एक प्रदेश में एक काल द्रव्य खचित है रत्नों की राशि के समान, तो वो उतना ही बड़ा हो गया। तो प्रदेश मात्र काल द्रव्य, काल द्रव्य एक प्रदेश मात्र है ना, द्वारा आकाश का जो प्रदेश व्याप्त हो उसमें आकाश का प्रदेश उसमें कालाणु में व्याप्त है अथवा कालाणु आकाश के प्रदेश में व्याप्त है, दोनों बराबर के हैं ना। उस प्रदेश को जब पुद्गल परमाणु, अब वो भी पुद्गल परमाणु से ही नापा था और अभी उसे काल से नाप रहे और फिर कह रहे पुद्गल परमाणु मंद से मंद गति से उल्लंघन करता है। क्यों पुद्गल परमाणु नापा, काल को ही चला देते लेकिन काल चलता नहीं है। काल अनादि काल से जिस प्रदेश पर स्थित है अनंत काल तक उसी प्रदेश पर रहने वाला है। इसलिए एक चलने वाला जो द्रव्य है वो जीव पुद्गल है, तो उन्हें पुद्गल से कैसे नापा, तो तब उस प्रदेश मात्र उल्लंघन के माप के बराबर, उस प्रदेश के बराबर नहीं, उस उल्लंघन के माप के बराबर जो काल पदार्थ, जो काल नामक द्रव्य है, जितना नापा तो सूक्ष्म वृत्ति रूप समय है, उसका सबसे छोटा हिस्सा। ये तो याद है तुमको, वृत्ति माने क्या, वो जो लंबाई नापी जाती है उसे वृत्ति बोलते हैं, प्रदेशों को विस्तार इसको वृत्ति, अनुस्यूति से रचित ऐसा आया था ना वो शब्द, समय है, तो वह उस काल द्रव्य की पर्याय है। अब उस पर्याय के पहले और बाद में वो वृत्ति को पर्याय कहा ना, एक समय की वृत्ति रूप से प्रवर्तमान होने से जिसका नित्यत्व प्रकट है, मतलब वो एक समय का जो काल है ना, तो उसके पहले भी तो है और उसके बाद में भी है, तो उन यहां तो देखा दोनों को, लेकिन मैं कहता हूं तीनों को, उन तीनों को शामिल कर लो तो वो अनादि अनंत एक समय नामक द्रव्य हो गया। क्या है? कोई बड़ी नहीं, पर ये कह रहे हैं एक समय को पकड़ा वो पर्याय हो गया, और उसके पहले और बाद के समयों को भी पकड़ा, और उनकी अनुस्यूति से रचित जो प्रवाह है उसको पकड़ा, इसको प्रवाह कहा, उसको विस्तार कहा था ना क्षेत्र को, तो वो काल नामक द्रव्य हो गया। कहने का मतलब यह है वो जो ये पुद्गल कालाणु है ना, काल द्रव्य का अनुरूप काल द्रव्य है, वो अनादि अनंत है, और उसी का एक समय का जो काल है, अब उस समय का हमने नापा क्या कि पुद्गल का परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जा रहे, ये हमने उसका नाप बनाया। जब वो पहले भी है और बाद में भी है, वृत्ति रूप लिखा ना इसमें, पूर्वोत्तर वृत्ति वृत्तत्वेन, पूर्वोत्तर वृत्ति से वर्तमान, जो पूर्व वृत्ति उत्तर वृत्ति और वर्तमान तीनों से मिला हुआ जो वो है, जिसका नित्यत्व प्रकट है, माने वो जो हमेशा रहेगा ऐसा पदार्थ द्रव्य है, इस प्रकार काल द्रव्य अनुत्पन्न और अविनष्ट है, ना वो पैदा होता है और ना वो नष्ट होता है, और पर्याय रूप समय उत्पन्न ध्वंसी है, वो हर समय पैदा होता है और नष्ट होता है। वह समय निरंश है। अभी ये चर्चा इस बात पर चल रही, आकाश के अनंत प्रदेश हैं, तो उसका अर्थ अनंत अंश हैं, प्रदेश को अंश कहो, प्रदेश तो वो नाप है ना, उसको हमने बोला वो कितना बड़ा छोटा अंश है, तो हमने कहा वो एक पुद्गल का एक परमाणु जितनी जगह घेरे इतना है, तो प्रदेश शब्द तो उस स्थान को बताता है ना, लेकिन ये द्रव्य है अंशी और ये एक प्रदेश है अंश, ऐसे ही द्रव्य है अंशी और एक समय है अंश, दो तरीके से समझे ना, तो वह समय निरंश है, मतलब अब हम कहें कि उसके और टुकड़े करो, अभी अपन ने कितने किए अनादि काल से लेके अनंत काल तक, जितने भी समय होते हैं उतने अपन ने अंश मान लिए, और आकाश के तो अनंत हैं, जी पुद्गल वगैरह के बताई दिए प्रदेश की अपेक्षा, अब कहते उसके भी और अंश हैं क्या, तो कहते वो तो नहीं तोड़ा जा सकता है, तो अब वो प्रश्न खड़ा होता है कि अंश नहीं है तो जब यहां से वो 14 राजु जाता है, मान लो अभी 100 मान लो कि 100 प्रदेश एक साथ उल्लंघन कर जाता है तो उसके 100 अंश होंगे ना भाई एक समय में जितना मंद गति से चलता है उसको तो हमने एक समय माना है ना। अब वो उससे कई गुना चल गया तो उस काल के भी अंश होना चाहिए, ये कह रहे माने। अब फिर ऐसा गणित लगाओगे आप लोग कि यदि वो 1000 अंशों में एक समय में गया तो 100 अंशों में कितने समय में जाएगा, तो अब ऐसी बताओ ना 1/10 जो भी ऐसे ही बोलोगे ना कुछ। ये प्रश्न समझ में आ रहा है ना, मतलब राई की ओट में पहाड़ है, कोई व्यायाम है, वस्तु स्थिति तो ये है कि वो एक ही समय में उतना चला जाता है और एक ही समय में जाता है, अब वो उसमें कोई दूसरा टुकड़ा उसका होता नहीं, उस अंश का कोई दूसरा टुकड़ा नहीं होता है। जैसे काल से ये है ना, ऐसे क्षेत्र से भी है। एक पुद्गल का परमाणु ने जितने आकाश के प्रदेश को घेरा तो उसको हम एक प्रदेश कहते हैं ना, तो लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं, असंख्या, और लोकाकाश में कितने परमाणु रहते हैं पुद्गल के, अनंत, तो अकेले असंख्या एक रूमाल में हो जाते हैं, आप समझ गए ना कितना पुद्गल परमाणु है ना, बहुत ज्यादा है ना, अंदाज लग गया ना। तो यदि वो उसके और एक ही में आकाश के प्रदेश में अनेक पुद्गल परमाणुओं के रहने की सामर्थ्य नहीं होती तो वे नहीं रह ही नहीं सकते थे, वो रह रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि उसमें भी अंश हैं। जब उसमें 100 समा गए तो 100 अंश मानने पड़ेंगे, एक का तो 100वां ही भाग है ना, अपन ये शरीर के पूरे मालिक हैं, समझ लो। यहां पर अध्यात्म छोड़ देना, माने आकाश जितने भी शरीर का आकार प्रकार है इसमें अपना एक जीव रहता है, उसके कर्म का उदय के अनुसार इसमें पंडमन वगैरह जो कुछ भी होता है वो होता है ना। अब इसी शरीर में असंख्य जीव और हैं, एक तो दूसरे वो हैं कि जो इसके सहारे रहते हैं, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा जू सिर में पड़ जाता है, ये शरीर में यहां कीड़े पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है, लेटरन में पेट में कहीं भी होते हैं ना कीड़े निकलते हैं, ये ऐसे जीव हैं जो स्वतंत्र रूप से पूरे जीव हैं और उनका उनके अंदर शरीर अलग है, अपने शरीर के भीतर हैं और उनका शरीर भी अलग है। जैसे कि गाय के बछड़े के पेट में से पटारे निकल जाती है ना, जयपुर के पानी में आदमी के पेट में भी कीड़े पड़ जाते हैं और डॉक्टर यहां दवाई देते हैं तो बहुत कीड़े निकलते हैं और वो सेपरेट जिंदा रहते हैं, फिर बाहर उनका शरीर होता है। एक ऐसे हैं और अब ऐसे ही कुछ हैं जिनका सबका मिलके एक शरीर है, जिन्हें हमने गोदिया कह सकते हैं कि 100% प्रत्येक कहते हैं साधारण कर सकते हैं ना, होते ना उसे कांख में यहां वहां ऐसा बोलते कि नहीं, कई स्थानों पर ऐसे जीव रहते हैं जिनका यही शरीर है, वही शरीर अपना है और वही उनका है। उसमें बहुत प्रश्न खड़े होते हैं क्या, जैसे इस शरीर में हमारे नाम कर्म के उदय से, हमारे कर्म के उदय से जो चेंजेज परिवर्तन होते हैं, अथवा जो चेंजेज परिवर्तन होते हैं उसमें हमारे कर्म का उदय निमित्त है, तो उन जीवों का क्या है, उन जीवों का भी जो कर्म है पूरा कारवां शरीर सेपरेट है ना। देखो औदारिक शरीर कदाचित दोनों का एक हो लेकिन वो कारमान शरीर तो दोनों के अलग अलग है ना, तो इसमें जो निमित्त निमित्त का संबंध है उसका क्या होगा, बहुत बड़ी बात है। यहां तो ये कह रहे वो कि ये वो निरंश है, आकाश का प्रदेश भी और काल का समय, उसके दूसरे टुकड़े हो नहीं सकते और उसमें एक भी द्रव्य रह सकता है, पदगल परमाणु रह सकता है और असंख्य पदगल परमाणु भी उसी जगह में रह सकते हैं। हमारे घर के लिए नहीं उतरता, क्यों? जब असंख्य रह गए तो असंख्य टुकड़े हो गए उसके, ऐसा ही समय में लगता हूं। मेरा गला बहुत सूखता है, शायद मैं कर पाऊंगा प्रवचन के नहीं। मैं घर पर रहता हूं ना, तो हर 15-15 मिनट में एक एक घूंट पानी पीता हूं, ऐसा करके करीब घंटा दो घंटा निकालने पड़ते हैं। और वो ही समय जो होता है तो मेरे को दिक्कत होती है, क्या होगा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। देखो वह समय निरंश है, उस समय में समझे ना, इतने अधिक चला जाएगा फिर भी वो निरंश है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो आकाश द्रव्य के एक प्रदेश का निरंशत्व ना बने। तो यदि ऐसा हम नहीं माने कि सब उसमें यदि ज्यादा हो गया है तो निरंश नहीं हो सकता, तो वे कहते हैं आकाश द्रव्य निरंश है माने अखंड है, ये बात ही नहीं बनेगी। माने आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं फिर भी वो अखंड है। अच्छा दो तो अपन ने टुकड़े कर ही दिए, लोकाकाश और अलोकाकाश, जिसमें छह ही द्रव्य रहे वो लोकाकाश बाकी का, तो लेकिन तो आकाश के दो टुकड़े हो गए। आकाश तब भी निरंश ही रहा। अब इसलिए यहां तो हमें समस्या नहीं लगती है क्योंकि वे अनंत प्रदेश हैं। अब एक प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है, तो एक प्रदेश में अनेक पुद्गल के परमाणु रहेंगे और वो अंश के टुकड़े होंगे नहीं। एक समय में परमाणु लोक के अंत तक जाता है देखो, और किसी समय के अंश नहीं होते, यह भी समस्या है। क्योंकि जिस प्रकार परमाणु के विशिष्ट अवगाह परिणाम होता है, उसी प्रकार परमाणु के विशिष्ट गति परिणाम भी होता है। वो अवगाह परमाणु प्रदेश के लिए और गति परिणाम काल के लिए, इन दोनों को बता रहे हैं। जैसे उसमें वो है एक प्रदेश में अनेक द्रव्य रह जाते हैं, तो एक समय में अनेक क्या हो जाएगा, हाँ वो अनेक समय में द्वीप चला जाएगा। इसे विशेष समझाते हैं किसे, कि उसी प्रकार परमाणु की विशिष्ट गति परिमाण होता है। कि वो परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए तो मंद गति क्यों बोल रहे हैं, वो छोटी गति, तो उससे तो नाप किया समय का और फिर उसी में कितना प्रदेश चला जाता है, वही प्रदेश से नाप किया और वही असंख्य प्रदेश चला जाता है। अनंत तो मैं अभी नहीं कह रहा हूं क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश ही असंख्य है, तो लोक का लोक में ही गया ना। इसलिए जिस प्रकार विशिष्ट अवगाह परिमाण के कारण एक परमाणु के परिणाम के बराबर अनंत परमाणुओं का स्कंद बनता है, तथापि वह स्कंद परमाणु के अनंत अंशों को सिद्ध नहीं कहता करता, क्योंकि परमाणु निरंश है। काल द्रव्य के दो अणु आपस में मिलते नहीं, पुद्गल द्रव्य के दो अणु आपस में मिलते हैं, क्योंकि इनमें वो शक्ति है स्निग्ध रूक्षत्व की, इसलिए इनका बंध हो जाता है। और उनमें स्निग्ध रूक्षत्व नहीं है काल अणुओं में, इसलिए वे दो आपस में चिपकते नहीं, मिलते नहीं है। इसलिए इसको उपचार से असंख्यात प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी कहा। जितने परमाणुओं का पिंड बन जाए उतने परमाणुओं को, उसको हमने उपचार से बहुप्रदेशी मान लिया। उसी प्रकार जिस प्रकार एक कालाणु में से व्याप्त एक आकाश का प्रदेश के उल्लंघन के माप से के बराबर एक समय के परमाणु विशिष्ट गति परिणाम के कारण लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, तब उस परमाणु द्वारा उल्लंघित होने वाले असंख्य कालाणु समय के असंख्य अंशों को सिद्ध नहीं करते, क्योंकि वह समय निरंश है। वो कहते हैं वो जब असंख्य प्रदेश पार करेगा जितने समय में, तो उतने समय के हमको उतने अंश करना पड़ेंगे। शिष्य का प्रश्न है तो वो कहते हैं कि वो संभव नहीं है, क्योंकि वो निरंश होता है। अब इनकी पूरी समस्या उस परमाणु को और उस समय को, उस आकाश के प्रदेश को और उस समय को निरंश सिद्ध करना है। वो तो है ही, परमाणु में अनंत परमाणु रहेंगे उस प्रदेश में, और समय में इतनी गति इतनी तेज होगी, ख्याल में आई ना, और वो भी रहेगी और फिर भी वो निरंश है, माने अखंड है। आकाश भी अखंड है और काल द्रव्य भी अखंड है। शांति जी, ये काल द्रव्य की अखंडता ये समझ ली होती तो जो काल द्रव्य जो निकालते हैं ना, पर्याय को निकाल दो द्रव्य में से, त्रिकाली ध्रुव वस्तु के स्वभाव में, तो उनको ये समस्या नहीं आती। उन्होंने तो पूरा काल द्रव्य ही निकाल दिया, वो इसमें लिखा ना काल द्रव्य की वो अखंडता, वो तो रहेगी ना उसमें। प्रत्येक द्रव्य में काल उसी का काल है ना, हर एक द्रव्य का अपना अपना स्वकाल है ना, और उसकी अखंडता भी रहेगी, तो हमने उसको भी निकाल दिया। हमने माने जो अध्यात्म को सही नहीं समझे गुरुदेव की वाणी से, उन लोगों ने उसको, जब ये बात का ज्यादा चर्चा तब हुई जब हमने क्रमबद्ध पर्याय में लिखी, और उस क्रमबद्ध पर्याय में ये सिद्ध किया कि अपने वो काल की अखंडता है। और समय सार में आता ना, द्रव्येण खंडयामी न क्षेत्रेण खंडयामी न कालेन खंडयामी, मैं काल के द्वारा खंडित नहीं होता हूं, माने अनादि से अनंत तक मेरे दो टुकड़े नहीं है, माने मैं कहीं जोड़ नहीं है, कहीं कि हम दो हिस्से, जिसे वन बोलते अविभागी प्रतिच्छेद, माने हमें समझने के लिए ज्ञान के लिए हम उसे टुकड़े कर लेते हैं ना, लेकिन वो अविभागी वास्तव में वस्तु में वे विभाग होते नहीं है, अविभागी। सब कुछ मिलाकर उक्त गाथा में यह कहा गया है कि अनादि अनंत नित्य कालाणु काल द्रव्य है। अब इसका मतलब यह है कि जो हमने वो अनादि अनंत नहीं माना ना, तो हमने काल द्रव्य से इंकार किया। सीताम्बर लोग काल द्रव्य नहीं मानते, कई ऐसा एक मत है उनका, प्रसाद में ऐसा द्रव्य आता है, अपन तो कहते हैं अस्थि काय नहीं है, है वो कहते है ही नहीं। और पुद्गल का परमाणु एक कालाणु द्रव्य से दूसरे कालाणु द्रव्य तक मंद से मंद गति से जावे, और उसमें जो काल लगे उसे कालांश समय कहते हैं, पर्याय कहते हैं। काल द्रव्य अनुत्पन्न और अविनष्ट है, और उसकी समय नामक पर्याय उत्पन्न ध्वंसी है। ये दो भेद काल द्रव्य की अपेक्षा है, और प्रत्येक द्रव्य का स्वकाल होगा, उसमें भी इसी प्रकार से ये घटित हो जाएंगे। इस गाथा और उसकी टीका में विशेष समझने की बात यह है कि जिस प्रकार एक आकाश प्रदेश में अनेक पुद्गल परमाणु एक साथ रहते हैं, फिर भी वे निरंश ही हैं, उसी प्रकार एक समय में 14 राजू जाने वाले पुद्गलाणु भी निरंश ही हैं। वे क्षेत्र से निरंश हैं और काल से भी निरंश हैं। यहां से वो पुद्गल का परमाणु ऊपर गया तो वो यहां भी है और स्वर्ग में भी है और ऊपर भी, तीन चार जगह है ना। तो ये कहते हैं जितनी जगह वो है, आकाश के जितने प्रदेशों में है, उस परमाणु में इतने अंश होना चाहिए, तो उसका एक अंश यहां रहेगा, एक अंश वहां रहेगा। तो हम तो कहते हैं कि वो तो निरंश है, तो हम ये कहते हैं पूरा ही परमाणु यहां है और पूरा ही परमाणु वहां है और पूरा ही परमाणु वहां है और सब जगह वो पूरा ही परमाणु है, तो भी परमाणु असंख्य हो जाएंगे। या तो परमाणुओं को असंख्य होना पड़ेगा या परमाणु के असंख्य टुकड़े होना पड़ेंगे। ऐसे ही काल द्रव्य को असंख्य होना पड़ेगा, वो जो जितने हैं ना वो एक एक में अलग है, वो अलग बात, एक काल है अनादि अनंत, इतने होने पड़ेंगे टुकड़े जितने समय हैं, और या फिर वो सबको यदि वो निरंश हैं तो एक सब जब भी वो ही था अभी भी वो ही है और आगे भी वो ही रहेगा, और अपन को इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये आत्मा अनादि काल पहले भी था, अनंत काल बाद भी रहेगा और आज भी है। अब वो लोग कहते हैं कि वो पर्याय वाला अंश निकल गया तो उतने उतने हम कम होते गए, जितने अंश हमारे में से निकल गए, तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने जवाब ये दिया है कि वो तो समुद्र की लहर जैसे हैं कि समुद्र में से उठी और समुद्र में ही समा गई, वो चली गई तो कहां चली गई, समुद्र में से लहर उठी, ये जो रूमाल है ना तो ये हिल रहा है तो ये हिलना बंद हो गया, तो इसका जो हिलना कहां गया, समाप्त खत्म हो गया, खत्म होके कहां गया, वो तो इसी में है ना, वो यही रूमाल हिल रहा था और वो हिलना बंद हो गया तो हिलने की अपेक्षा नहीं हिलने रूप अवस्था हो गई, इसलिए वो समस्या नहीं आएगी कि जितना जितना समय निकलता जाएगा उतना उतना द्रव्य नष्ट होता जाएगा। तो ये द्रव्य का स्वरूप है, वस्तुतः हमारे चित्त में इस समझ में आना चाहिए, काल सब द्रव्यों का स्वरूप जो है जैसा है वो हमारी समझ में आना चाहिए। यदि समझ में नहीं आएगा तो हमारे लिए वस्तु का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा। अभी ये बातें हमने पढ़ ली छड़ाला में, भागवत पाठमालाओं में, द्रव्य संग्रह में, और उस वक्त ऐसी बहस नहीं की, न हमने की न पढ़ाने वालों ने की, और अभी इस प्रवचन सार में तो उसे हम कहते हैं हम बहुत बारीकी से बात करते हैं तो उन्होंने इसमें प्रश्न उठाया। प्रश्न उठता तो अपने दिमाग में तब भी था, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसी समय यहां है उसी समय वहां है, यानी अपना हाथ रेल के डिब्बे में ऐसा बाहर निकला रहा है उसकी खिड़की पहले, आजकल तो अपने एसी में जाते हैं ना तो बिल्कुल बंद रहती खिड़कियां, लेकिन पहले तो हाथ बाहर निकाल लेते थे ना तो हाथ को हवा लगती थी तो सारे शरीर की गर्मी दूर हो जाती थी, तो इतना इतने हिस्सा ठंडक लगेगी इधर गर्मी रहेगी, तो वो यदि निरंश है तो हो जाता था ना ऐसा, नहीं तो अलग अलग मानेंगे तो उसे ठंडक लेना चाहिए इधर गर्मी रहना चाहिए। तो अब वो एक जीव ले अभी जीव के वो नरक में भी है प्रदेश के, और कुछ प्रदेश स्वर्ग में भी है, और तो पहले नरक में भी है सातवें नरक में भी है, तो बहुत जोर की सर्दी लगती होगी और बहुत जोर की गर्मी लगती होगी, क्या सोगाणी जी समझ आई ना बात, जब वो ही आत्मा का प्रदेश यहां भी है वहां भी है, अखंड असंख्य प्रदेशी जो भगवान आत्मा है वो यहां भी है और वहां भी है, ऐसा नहीं है कि वो लोक केवल ही समुद्घात हो गया है रूप रूप नीचे है, अभी केवल ही समुद्घात नहीं है, वो अपने स्वदेह प्रमाण है, वो एक देह में से निकल के यदि दूसरी देह में गया हो तो भी वो उसी आकार में रहता है ना, तो सब जगह तो नहीं है और फिर भी दोनों जगह है, अब ये बात गले उतरती नहीं है। तो इसमें अभी 40वीं गाथा की टीका में जो अपन पढ़ेंगे उसमें बहुत स्पष्ट ये सिद्धि किया कि वो निरंश है, काल की दृष्टि से भी और क्षेत्र की दृष्टि से भी, मतलब यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा एवं चेत एवं स्यात एवं चेत एवं स्यात करके हमारे गले में फंसाया वो, ये तुम नहीं मानोगे तो आकाश को निरंश नहीं अखंड नहीं मान सकोगे हैं, और हम कहते हमें नहीं मानने आकाश को अखंड, तो कहते नहीं नहीं वो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो तो शास्त्र में लिखा है कि आखंड है, फिर वो हमारे गले में शास्त्र डाल दिया ना, क्योंकि हम शास्त्र को स्वीकार करते हैं। उनने जो एक कहा लिखा हमने इसे बहुत बारीकी से पढ़ा और शांति जी को बुलाकर उनके साथ बैठ के भी पढ़ा, क्या समझे ना कि भाई ये इसमें स्थिति क्या है वास्तविक है? तो हमको अंत तो इसमें ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि भाई वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है तो हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं बैठ रहा। फिर जो केवल ज्ञान गम में बातें हैं उसको तुम्हें छयोपम ज्ञान के माध्यम से ग्रहण करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। छयोपम ज्ञान के माध्यम से आप आगम से ही ग्रहण कर सकते, और जिस तरह से युक्तियां आचार्य देव ने दी हैं उसी तरीके से हमको इनको ग्रहण करना पड़ेगा। अभी 140वीं गाथा पढ़ो।
आकाश शमुनि विद्धम आकाश पदेश सन्नया भणिदम सवेशिं चाडूडम सकदितम देदुमवगाशम अडोरहे जितने गगन में वह गगन ही परदेश है। अरे उस परदेश में ही रह सके परमाणु सब।
यही तो सीधी सी बात है कि आकाश के जितने हिस्से में एक परमाणु रहता है उसे प्रदेश कहते हैं, और उसी एक प्रदेश में सारे परमाणु भी रह सकते हैं, है ना। अनुरहे जितने गगन में वह गगन ही परदेश है, माने प्रदेश है, और अरे उस प्रदेश में ही रह सकें परमाणु सब। और आकाश का निरंशपना भी बना रहेगा, ये नहीं कहते पूरे आकाश में सब परमाणु रह सके, ऐसा नहीं कह रहे आकाश को भी पूरा ले लो और परमाणु भी सब पूरे ले लो और उसमें मिल बांट के रह लेंगे, नहीं। वो तो एक प्रदेश में ये सब परमाणु रह सकते हैं, ऐसी शक्ति परमाणुओं में भी है और प्रदेशों में भी है। दोनों में क्यों जरूरत है? प्रदेशों में अपने में रखने की शक्ति है, अवकाश दान की शक्ति है, और परमाणु में इस उतनी कम जगह में रहने की शक्ति है। क्या एक परमाणु जितने आकाश में रहता है उतने आकाश को आकाश प्रदेश इस नाम से कहा गया है, और वह समस्त परमाणुओं को अवकाश देने में समर्थ है। अवकाश प्रदेश माने प्रदेश है ना। आचार्य अमृतचंद इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, ये पूरा एक पेज है, इसमें आचार्य ने बहुत तर्क व युक्तियां दे दे करके हमारे गले वो बात उतारने की कोशिश की। एक परमाणु से व्याप्त आकाश का अंश एक आकाश प्रदेश है। एक परमाणु से व्याप्त माने एक परमाणु जिसमें फैल जाए, बन जाए, व्याप्त हो जाए, व्याप्त व्याप्त माने व्याप्त होने योग्य। एक एक परमाणु व्याप्त, परमाणु से व्याप्त आकाश माने वो आकाश का ये हिस्सा जो एक परमाणु ने जितना घेरा है का अंश एक आकाश प्रदेश है, उसे आकाश का प्रदेश कहते हैं, प्रदेश कहते हैं मतलब। और वह एक आकाश प्रदेश शेष पांच द्रव्यों के प्रदेशों को परम सूक्ष्मता रूप से परिणमित अनंत परमाणुओं के स्कंदों को अवकाश देने में समर्थ है। अकेले परमाणुओं को ही नहीं बाकी के सब द्रव्यों को भी है? बाकी के जीव सब द्रव्य उसी में, हर आकाश के प्रदेश में छह ही द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य है वहां, धर्म द्रव्य भी है, एक कालाणु भी है, है? और जीव के जीव भी है, पुद्गल भी है, और वो आकाश स्वयं तो है ही, छह ही द्रव्य है। प्रत्येक एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां पर सही द्रव्य नहीं हो लोकाकाश में, लोकाकाश छोड़ देना। आकाश एक अखंड द्रव्य है, फिर भी उसमें अंश कल्पना होती है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। अब ये हमारे गले में डाल रहे, हमको कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं मानोगे तो आकाश सब परमाणुओं को जगह नहीं दे पाएगा, जैसे वो जगह देने का जिम्मेवारी हमारी हो तो नहीं दे पाएगा तो समस्या है ना। यानी कहने का मतलब ये तो हमारा सर्वमान्य सत्य है कि उस आकाश के प्रदेश में सारे परमाणु रहते हैं, इस आगमाश्रित हेतु है जी, जानते हैं आप ये अजैनी क्यों मानेगा। ये तो अपन आचार्य दिन में अनंत श्रद्धा रखते हैं इसलिए वो हमको ये बात कह करके ये बात कह रहे हैं। जैसे हम कहें कि साहब वो यदि ऐसा मानेंगे कि पांच इंद्रियों के विषय भोग सामग्री है, इसके बिना सुख नहीं होता है, तो फिर सिद्ध भगवान सुखी नहीं रहेंगे। अपन अपन कहें ना, तो फिर वो कहेंगे नहीं रहे, हमें क्या सिद्ध भगवान सुखी हो, हमें क्या जरूरत है, हमें तो नहीं हो, तो यदि कैसी बात करते हुए तो है ही अब हमको फिर है ही सिद्ध भगवान सुखी हैं, ये हमको स्वीकार कराते हैं ना वे, क्योंकि हमने स्वीकार किया हुआ है कि सिद्ध भगवान पूर्ण सुखी है। वे कहते भोग सामग्री के बिना यदि सुख नहीं होता है तो अनंत भगवान सिद्ध भगवान सुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन सिद्ध भगवान तो अनंत सुखी है, इसे सिद्ध होता है इनसे नहीं होता। तो हमने जो ये बात सिद्ध की, एक जैनी को ही हम ये बात सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें हम नहीं मानेंगे ऐसा आगम, अरे कैसी बात करते हो कि हम आगम नहीं मानेंगे, तुम्हें मालूम है कि तुमने आगम से क्या क्या मान रखा है, तीर्थंकर 24 होते हैं ये भी तुमने आगम पढ़ के ही माना है, फिर तुम ये भी नहीं मान सकोगे, अगर नहीं मानेंगे तो फिर ये मंदिर तुमने बनाए ना 24 तीर्थंकरों की, फिर मंदिर नहीं मान सकोगे, फिर पूजा नहीं कर सकोगे, दर्शन नहीं कर सकोगे, स्तुति नहीं कर सकोगे, क्यों हम नहीं मानेंगे, तो अकीर्तन चैत्यालय नहीं मान सकोगे, तो उसका विधान नहीं कर सकते, तुम रोजीना पूजन करते हो, कृतकृत्यम चैत्यालयों की वंदना बोलते हो ना, और फिर एक एक जगह गिनाते हो, फलानी जगह है, हमें तो वो जगह दिखती नहीं, तो तुम ये चलता नहीं ना, हम चुपचाप मानते जाते हैं कि नहीं मानते जाते हैं, तो आगम के आधार पर हमने क्या क्या मान रखा है, और नहीं तरफ अभी हम नहीं माने, ये कह दो कि अभी हमारे पास जबरदस्ती नहीं है, तो हम फिर जीरो पे जाके खड़े हो जाते हैं। जितना ज्ञान का क्षेत्र अभी दुनिया में पढ़ाई हो रही है ना, विज्ञान की सब सब्जेक्ट की, कि एक किलोमीटर इतना लंबा चौड़ा होता है, एक मीटर इतना होता है, एक किलो इतना होता है, इतना तो नाप सब चल रहा है ना सारी दुनिया में, तो उससे सारे अपना व्यवहार चल रहा है, कि हम नहीं मानेंगे एक मीटर इतना क्या होता है, हम तो इसका डबल मानेंगे, तो चलेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम यहां से एक कदम नहीं चल सकते हो, फिर बाजार से तुम एक गज कपड़ा नहीं खरीद सकोगे, क्यों, यानी लोक में जितना ज्ञान सुनिश्चित है और लोक ने मान्य कर लिया है, उसके आधार पर हम कितना अधिक व्यवहार चलाते हैं, हमसे दर्जी कहता है इतना कपड़ा लाओ, हम उस नाप को नहीं माने और उसे अलग माने तो ज्यादा कम ले जाएंगे, तो वो चीज नहीं बनेगी ना। मेरे कहने का मतलब ऐसा कहते हैं कि हमको अपने को पशु की पर्याय में ले जाना हो तो तुम इस ज्ञान से इंकार करो, तारा तुम्हें समझ में आए ना, पशु को नहीं है कुछ भी, अब उसका कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं है, और हमें तो हमने तो इतना ज्ञान जो हमारे पूर्वजनों ने नक्की कर लिया है वो हमें झकमार के सच्चा मानकर और उस मास्टर से पढ़ना पड़ेगा जो दिन में 10 दफे झूठ बोलता है, लेकिन वो पढ़ाएगा तो उसे हमें सच मानना पड़ेगा, है ये इतने का मीटर इतने इंच का होता है, फलाना होता है, जो भी है ना, वो कहे साहब मास्टर जी बहुत झूठ बोलते हैं, ठीक बोलते होंगे लेकिन तुम जाओ बेटा उन्हीं के पास पढ़ो, नहीं ले तुम्हारे गुरु जी धर्म के गुरु जी भी झूठ बोलते होंगे तो भी तुमको द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, ये सब मानना पड़ेंगे, उन भी गुरु जी झूठ बोलते हैं तो उनने जो ये बताया है ये भी झूठ नहीं हो जाएगा। मैंने ज्ञान का जितना विकास हो गया है वो सर्वमान्य विश्व में उतना ज्ञान तो तुम्हें रट रट के सीखना पड़ेगा। उसने तुम्हारा माथे में तुमने मारा, अकल लगाई कि हम नहीं मानेंगे, हम तो ऐसा मानेंगे, तो ऐसा नहीं। जैसे तुम छू के देखते हो तो अग्नि गर्म है, तो इसे गर्म कहते हैं, नहीं हमें इसे, हम तो इसे ठंडा कहेंगे। बर्फ को छू के देखा इसे ठंडा कहते हैं, यानी हम तो इसे गर्म कहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सारे विश्व ने उसे गर्म और उसे ठंडा मान लिया है, तो तुम्हें उसे गर्म और ठंडा ही कहना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा ये जो ज्ञान है, जो आगम में लिखा है, उससे हमने बहुत कुछ मान लिया है, और बाकी का जो नया ज्ञान दिया जाता है वो उसको आधार और सत्य है ऐसा मान करके ही दिया जाता है। जो ये भाषा आ रही है ना, वैसी की वैसी। ऐसा होने पर यदि कोई ऐसा कहे कि आकाश के अंश नहीं है, वो तो कहते आकाश निरंश है, माने अखंड है ना, तो उसके फिर वे अंश नहीं है, तो फिर अनंत प्रदेश नहीं मानना पड़ेंगे, फिर ये बात नहीं हो। ये तो मानी है शास्त्र में आकाश से अनंतता, ये सूत्र तो हमने पढ़ा है। तो आकाश में दो उंगलियां उठाकर हम पूछते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं, ये दो उंगली हमने उठाई, हम पूछते हैं कि इन दोनों उंगलियों का क्षेत्र एक है या अलग अलग, ऐसा नहीं लिखा एक है या अनेक। न्याय की भाषा के लिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें समझने की सुविधा के लिए कहते हैं कि इन दोनों का क्षेत्र स्थान अलग अलग है कि एक है। तुम इतने विद्यार्थी यहां रहते हो, जितने भी रहते हो, पौने 200 जो भी, तो तुम कहां रहते हो? टोडामल स्मारक में रहते हो ना, तुमने एक ही जगह रहते हो ना तुम लोग, जयपुर में बापू नगर में टोडामल स्मारक में एक ही जगह रहते हो कि अलग अलग? और एक जगह रहते हो कि अनेक जगह रहते हो? जैसे ने ऐसा किया है, इनने दो उंगलियां खड़ी करी अमृतचंद ने, जैसे इनने दो मुनि खड़े कर दिए, मैंने दो अपने विद्यार्थी खड़े कर दिए। तो इसका एकदम दो उत्तर होते हैं ना, कि हाँ एक ही जगह रहते हैं, एक ही स्मारक में हम सब विद्यार्थी एक साथ रहते हैं, तो एक जगह एक ही क्षेत्र में हो गया ना। और फिर कहते हैं नहीं नहीं, ये 9 नंबर कमरे में, ये 8 नंबर कमरे में, तो अलग अलग हो गया ना। फिर तो इसका मतलब स्मारक के कितने टुकड़े हैं? जितने जितने जो एक रहते हैं वे सब उसके अंश हो गए ना। तो ऐसे ही आकाश द्रव्य के अनंत अंश भी हैं, और वो अनंत अंश होने पर भी अखंड भी है, माने वे अंश अलग अलग किए नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता वे दो कमरे हैं ना, 8 नंबर और 9 नंबर, तो 9 नंबर को इस विंग में ले जाएं और 8 को इधर ले जाएं। वो तो अगल बगल में है, तो उनका क्षेत्र अगल बगल में ही रहेगा, अब वो अखंड रहेगा बीच में, वो जुड़ा हुआ है, वो टूट नहीं सकता। तो वो निरंश भी है और अंश भी है। यदि अंश नहीं मानेंगे तो अनंत प्रदेश है आकाश के, ये नहीं कह सकेंगे। और अखंड नहीं मानेंगे तो आकाश द्रव्य एक है, ये नहीं कह सकेंगे। तो वो सामने जो है नास्तिक आदमी, वो कहता हम नहीं कहेंगे, हमें कौन सा शौक है कि हम आकाश को एक कहें कि अनेक कहें। वो कहते भैया तुमने शास्त्रों में पढ़ा है ना और उसे माना है, तो वो गलत हो जाएगा, तो तुम्हारी वज्र पढ़ना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? मैंने आकाश आगम के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, समझिए ना, कभी ऐसा नहीं माना जा सकता। वो तो है ही, आकाश एक है और उसके अनंत है ना प्रदेश है। तो ऐसा ही देखो, उंगलियां कहां गई? हम पूछते हैं कि इन दो उंगलियों का क्षेत्र एक है कि अनेक? देखो इसे बोलते जिंदा भाषा। अब वे तो लिख रहे हैं, कोई है नहीं सामने अब, और हम पूछते हैं कि ये दो उंगलियों में, तो हम तो बता रहे हैं, वे कहां बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? वे उंगलियां ही नहीं उठा रहे। मैंने भाषा में भी ان دو انگلیوں کو کہہ دیتے ہیں بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی, اور یہ انگلیاں نہیں بتائیں تو بھی ایک ہے کہ انیک, انیک معنی الگ الگ. یدی ایک ہے ایسا کہو تو پھر پرشن ہوتا ہے کہ آکاش ابھن انشوں والا ابھیواگ ایک درب ہے, اس لیے دو انگلیوں کا چھیتر ایک ہے, یا بھن انشوں والا ابھیواگ ایک درب ہے اس لیے دو انگلیوں کا چھیتر ایک ہے. سمجھ میں آیا نا؟ تو پھر اس میں سے انہیں دو پرشن کھڑے کر دیے کہ وہ کہتے ہیں ابھن انشوں والا ہے اس لیے ایک ہے کہ بھن انشوں والا ہو کر کے بھی ایک ہے. یہ پرشن کھڑا کیا. اس کو تم شانتی سے گھر پر جیسے ہم نے پڑھا نا بیٹھ کے شانتی جی کے ساتھ, ایسا تم بھی پڑھنا کئی دفعہ ہے. پھر اس کا بھاو آپ کے خیال میں آتا کہ نہیں آتا. ابھی سمسیا یہ نہیں ہے کہ تمہارے اس کو الگ رکھنا کہ ہمارے چت کو سویکرت ہوتا کہ نہیں ہوتا. پہلے تو آچاری کیا کہہ رہے ہیں ہمیں وہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے, پھر رٹ کے نہیں سمجھ لینا, پھر اسے رکھ دینا, پھر اسی کو یہاں بھاشا دے کے لکھنا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم دو گلیوں کا چھیتر بولتے ہو کہ ایک ہے کہ انیک ہے, انیک مانے بھن بھن الگ الگ ہے. تو تم نے کیا مانا ہے؟ وہ انش جو ہیں آکاش کے ان کو آکاش سے ابھن مان کر بات کر رہے ہو کہ ان سے بھن مان کر بات کر رہے ہو؟ ایسا پرشن اٹھاتے ہیں. پھر ان دونوں کا جواب دیں گے کہاں پر رہے. یدی آکاش ابھن انش والا ابھاگ ایک درب ہے, یہی پڑھنا ہے نا کہ اوپر اور اوپر چلنا. تو اس لیے تو دو انگلیوں کا ایک چھیتر ہے ایسا کہا جائے, کیونکہ آکاش ابھن ہے اکھنڈ ہے اس لیے دونوں ایک ہی ہے. یہ تو کہتے ہیں ٹوٹا ملس ہمارا ابھن ہے اس لیے ہم دونوں ایک ساتھ ہی رہتے ہیں. یہ جو ہم بول رہے ہیں جبکہ آپ ادھر رہتے ہو یہ ادھر رہتے ہو دونوں کے بیچ میں 25 میٹر کا انتر ہے, پھر بھی ہم ایک ہی جگہ رہتے ہیں. تو آکاش کے ایک اس پردیش میں رہے نرک میں نیچے ادھو لوک میں, ایک اوپر لوک میں, لیکن دونوں آکاش میں رہتے ہیں. یہ تو ہم کہتے ہی ہیں نا, جب ہم ایسا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہو ابھن ابھن آکاش ہے اس لیے کہتے ہو, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھن انش والا اسے الگ اور جے الگ ہے ایسا مان کے کہتے ہو. دو باتیں پرشن اٹھائیں نا, تو ابھن انش والا بھاگ ایک درب ہے اس لیے دو انگلیوں کا ایک چھیتر ہے ایسا کہا جائے, تو جو انش ایک انگلی کا چھیتر ہے وہی انش دوسری انگلی کا بھی چھیتر ہے, اس لیے دو میں سے ایک انش کا ابھاو ہو جائے گا. کہ یہ بھی ٹوٹا ملس مارک ہے, یہ بھی ٹوٹا ملس مارک ہے, تو دو کائے کو بولتے ہو؟ ایک ہی سمارک ہے, ایک ہی دے جائے گا. یہ کہتے ہیں وہی انش دوسری انگلی کا بھی چھیتر ہے اس لیے دو میں سے ایک انش کا ابھاو ہو جائے گا. اس پرکار ایک سے ادھک دو آدھی انشوں کا ابھاو ہونے سے آکاش بھی پرمانو کے سمان پردیش ماتر سدھ ہوگا. پھر آکاش بھی ایک ہی پردیشی ہو جائے گا, انت پردیشی آکاش نہیں رہ سکتا. اب اس میں سب میں وہی اتر ہے کہ ہم کہتے ہو تو ہو جائے, لیکن وہ کہتے بھائی صاحب ہم نے جو شاستر میں پڑھا ہے کہ آکاش کے انت پردیش ہوتے ہیں وہ ہمارا پکا وعدہ ہے, تو وہ ٹوٹ جائے گا. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کل سب سے بڑا سنکٹ ہے یہ. جتنے لوگ بھی تم سے سماج میں جاؤ گے اور بحث کریں گے وہ ایسے ہی چھٹے سانڈ ہوتے ہیں, کہنے ہم نہیں مانتے, ہمیں نہیں ماننا. ہم کہیں آلو میں آنند جیب ہوتے ہیں, جیسے ساتھ میں ہم نہیں مانتے, ہمیں تو اچھی طرح دیکھ لیا, کیا کر ماننے. جیسے رجنیش جیسے ودوان ہے نا, یہ ایسے ہی ہیں. بس جو بات ہے کہتے ہیں ہمیں نہیں ماننا, ہم نہیں مانتے. بس جو اچھی بات ہے مان لیں گے, سنائیں گے, وہ باقی سے انکار کر دیں گے. جب کسی سے بنتے ہی نہیں ہیں تو پھر بحث ہو نہیں سکتی ہے. تم پہلے اپنا سدھانت بتاؤ, जैसे हम कह रहे हैं कि आकाश एक द्रव्य है, उसके अनंत प्रदेश हैं, तो तुम बताओ कि जो अवकाश दान की जो चीज है वो क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, फिर उस पर बहस करेंगे। तो वो कहते हमें वो भी बताता नहीं, क्योंकि वो बता जाएगा तो उससे तो बंधना पड़ेगा ना उसे। तो जो कोई आदमी बंध नहीं सकता, पहले जितनी भी बहस होती थी ना वो कैसी होती थी कि हम कहें बौद्ध बौद्ध ऐसा कहते हैं तो हमारा उनसे ऐसा कहना है, तो जो फिर बौद्ध शास्त्रों में लिखा है वो उससे इनकार नहीं कर सकता था। हम कहें तुम्हारे यहां ऐसा लिखा है, हम तो नहीं कहते, ऐसा नहीं कह सकता है वो, हम तो नहीं कहते। क्यों? कि भगवान महावीर की दिव्य धुनी में ये आया था, तो हम तो नहीं मानते, हम नहीं कहते कि हम आया था, ऐसा नहीं कहते। यदि अपने लिखा था अपन को मानना पड़ेगा, ख्याल में आए ना, तो उसे बंधना पड़ेगा। तो इसी तरीके से, इस तर्क से उनने अपन को ये बार गले उतारने की कोशिश की। बात तो बहुत छोटी सी है, बस इतनी सी है कि एक आकाश के प्रदेश में असंख्य परमाणु एक साथ रह सकते हैं, और एक रहे तो एक ही रह सकता है, और उससे कम जगह में एक परमाणु नहीं रह सकता। समझ में आई ना ये अंतिम वाक्य मैंने क्या बोला? समय हो गया मुझे मालूम है। उससे उसी में और असंख्य परमाणु ठहरा दो, लेकिन एक को एक प्रदेश चाहिए ही चाहिए। कहते देखो, एक लड़के को ठहरने को एक कमरा चाहिए, और हम चाहें तो उसी में चार विद्यार्थी ठहरा दें, लेकिन हमारे पास चार नहीं है, एक ही है। तो एक बटा चार कमरे में नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसके चार गेट नहीं है, चार किवाड़ नहीं है। आप समझे ना, मैंने उसमें एक परमाणु को एक प्रदेश चाहिए ही चाहिए, और उसमें अनंत परमाणु ठहर सकते हैं, लेकिन एक परमाणु को उससे कम जगह में नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उससे कम जगह होती नहीं। कम जगह नहीं होती माने उस जगह के दो टुकड़े किए ही नहीं जा सकते। ये बात है, पढ़ना कल, फिर अपन कल चर्चा करेंगे।